ओम शांति। हम कितने ना परम सौभाग्यशाली हैं, बाबा के बच्चे वो रत्न हैं जो के हर पल हर घड़ी बाबा हम बच्चों की रक्षा कर रहे हैं। ऐसा अनुभव होता है सबको कि बाबा हर पल हर घड़ी हम बच्चों की रक्षा कर रहे हैं। महसूस होता है, महसूस होता है। तो ऐसे सभी बाबा के बच्चे, लाडले सिक्की लदे बच्चे हैं जो भगवान की गाइडेंस मिल रही है, हर पल हर घड़ी उसके इशारे भी मिल रहे हैं सूक्ष्म रूप में से। तो आप जानते हैं जब भगवान सृष्टि पर आ चुके हैं सृष्टि पर, तो किस लिए आए हैं? नई दुनिया बनाने के लिए। तो हम बच्चों की बाबा मदद कर मदद हम बच्चों की मदद चाहिए ना बाबा को। तो हम किस बात पे मदद कर रहे हैं? किस बात की मदद क्या चाहिए बाबा को? बोलो जी। पवित्रता सबसे ऊंची है, तो पवित्रता की ही हम विशेष बाबा को मदद कर रहे हैं। जितना जितना पवित्रता में हम बिल्कुल हमारा फाउंडेशन मजबूत रहेगा पवित्रता का, और उतना ही सत्यता, एक बल एक भरोसे रहते हुए सत्यता पर हम चलते रहेंगे तो बहुत कुछ आप भरपूरता का अनुभव करते रहेंगे। ये तो जैसे जैसे हम बच्चे अधिक से अधिक हम ज्ञान की गहराई का अनुभव करते जाएंगे और योग का अच्छे अच्छे अनुभव करते जाएंगे, उतना ही आप सभी बहुत बहुत हल्का महसूस करते रहेंगे। कोई भी आपके आगे कोई भी समस्या अगर आएगी भी, तो वो समस्या समस्या नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी? क्योंकि आप ज्ञान को अच्छी तरह से आप यूज कर रहे हो, ज्ञान को प्रैक्टिकल अपने व्यवहार में यूज कर रहे हैं। ये लाइट चल रही है, माइक चल रहा है, पंखा चल रहा है, ये कहां से आ रही है? सारी पावर हाउस से करंट आ रही है, पावर हाउस से आ रही है ना। तो हम जब बाबा को याद करते हैं तो याद करते समय पावर हाउस शिव बाबा, वहां से हमें जो करंट मिलती है, लाइट मिलती है, शक्ति मिलती है, और वो शक्तियों के द्वारा हम क्या अनुभव करते हैं व्यवहार में? मधुरता, प्यार, सहनशीलता, गंभीरता, ये सब गुण जो है वो हमारे प्रैक्टिकल व्यवहार में जब आते हैं तो वो हम को कोई भी परिस्थिति भी अगर आती है तो हमें कोई कठिनाई का अनुभव नहीं होता है, क्योंकि अपने पास सब खजाने हैं, बाबा ने सब दिए हैं। योग के द्वारा ही हम सब कुछ प्राप्त कर रहे हैं, ज्ञान के द्वारा ही सब हम प्राप्त कर रहे हैं। जैसे एक वकील एडवोकेट होता है, उसके पास अनेक प्रकार के केस आते हैं, भिन्न भिन्न केस आते हैं, और उनकी बुद्धि में सब भरा हुआ होता है, हर केस का अनुभव होता है उनको, तो पॉइंट सब याद रखते हैं। तो जब पॉइंट सब याद रखते हैं, उनकी बुद्धि में पॉइंट रहते हैं, किस केस में क्या चाहिए पॉइंट, वो सब एकदम भरा हुआ होता है उनकी बुद्धि में। इसी प्रकार जब हमारे सामने भी कोई समस्या आती है तो वो समस्या हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं होती है, क्योंकि ज्ञान को हम यूज करते हैं। ज्ञान पॉइंट जो है वो समय प्रति समय जब आप यूज करते रहेंगे तो वो आप बिल्कुल लाइट हल्के रहेंगे। मैं अपना 2 मिनट का ही अनुभव सुनाता हूं कि जब मैं शुरू में जब 68 में जब मैं ज्ञान में नया नया आया था और उस समय अव्यक्त मुरलियां तो बाद में चली जबकि उस समय सकार बाबा थे, तो उस समय जो मुरलियां चलती थी तो उस मुरलियों का पूर्ण रूप से मैंने बहुत अध्ययन किया था। जैसे बाबा अव्यक्त हुए, अव्यक्त होने के बाद वो पॉइंट मैं नोट करता रहता था और बुद्धि में बिल्कुल बैठा ही रखता था कि किस समस्या में कौन सा पॉइंट मुझे काम आएगा। वो प्रैक्टिकल मेरे व्यवहार में वो सब काम आते गए और मुझे बहुत सहज भाव से मैं उसको पार करता गया। मेरे लिए कोई कठिनाई थी, मैं यहां तक संकल्प कर लिया था बाबा के कमरे में जाके, बाबा आपने इतना मेरे को सुख दिया है, इतना प्यार दिया है, इतना आनंद आया है आपका बनने से। मैंने संकल्प कर लिया था कोई भी समस्या घर की हो, शरीर की हो, कैसी भी समस्या हो मैं उसको खुशी खुशी पार करूंगा। और मैं ये बाबा को कमरे में कहा था कि बाबा कोई भी परिवार में, लौकिक परिवार में सारे के सारे इस विनाश के समय कोई भी मां बचे, मैं बिल्कुल एक आंसू भी नहीं बहाऊंगा। सारे के सारे भले परिवार के एक साथ चले जाएं, मैं एक भी आंसू नहीं बहाऊंगा। ये मैंने स्मरण कर लिया था, प्रतिज्ञा कर ली थी बाबा से कि एक भी आंसू नहीं बहाऊंगा। सर्वशक्तिवान परमात्मा जब मिल गया उसे सब कुछ प्राप्तियां होती हैं, फिर मैं ये आज ये है कल दूसरा परिवार आ जाता है, कल कोई दूसरा संबंध बन जाता है। बाबा ने यहां तक कहा था बच्चे ऐसा समय आएगा जिसके जो लौकिक परिवार के और अलौकिक ब्राह्मण परिवार के कितने भी गहरे से गहरे संबंध भी क्यों ना हो। ये बाबा ने कब कहा था, 2001 में एक संदेश में, बाबा ने ये संदेश में कहा था 2001 में जब जगदीश भाई गए थे, तब संदेश में बाबा ने ये शब्द कहे थे कि बच्चे अगर आप लास्ट में जिनको आप आधार बना करके बैठे हुए हो कि समय आने पर ये बहुत हेल्प करेंगे, बहुत मदद करेंगे, ये पक्की बात अंडरलाइन डबल अंडरलाइन कर लो, कोई भी हेल्प करने के लिए आपके पास नहीं आएगा। आप प्रैक्टिकल कोरोना के कारण आप अनुभव कर रहे हो ना, किया है ना अनुभव। एक माता पिता के छोटी बच्ची 6 साल की बच्ची कोरोना हो गया, सब माँ बाप वो कोने में जाके बैठे हुए हैं और वो दूसरे कोने में जाके दूसरे कमरे में बैठी हुई है, वो तड़फ रही है बच्ची, लेकिन मजाल है कोई माँ बाप उसके नजदीक आके, उसको अपना डर हो गया कि हम इनके पास जाएंगे तो हमको भी कोरोना हो जाएगा, हम ही नहीं बच पाएंगे। तो ऐसी स्थिति बन जाती है और बनी ना ऐसे दुनिया के अंदर, पता चल गया कि वास्तव में कौन पराया है कौन अपना है। वास्तव में आप भी अंदर से समझ लो इस संसार में ना कोई अपना है ना कोई पराया है, आप न्यूट्रल बन के रहो। बिल्कुल बाबा ही अपना संसार है, बाबा ही अपना सब कुछ है। आप किसको भी आप बना के अपना अनुभव करके देख लिया होगा, कहीं उन्हें अनुभव किए होंगे, समय कर कोई साथ नहीं देता। आज कोई कर्जा किसी से लेता है बंदियों से, कोई वापस नहीं देता कर्जा भी, नहीं देता है, कहता काहे का, नहीं देते हैं, हिम्मत नहीं है, ना दो तो भी मुसीबत, मांगो तो भी मुसीबत है ना, ऐसे अनुभव हो रहा है ना ऐसे। इसलिए संसार में कोई अपना नहीं है और कोई पराया भी नहीं है। ऐसा ही आप न्यूट्रल बन के आप रहेंगे तो बहुत सुखी रहेंगे संसार में जीने के लिए, खुश रहने के लिए निश्चिंत रहने के लिए एक बात हमेशा आप याद रखेंगे तो आप निश्चिंत भी रहेंगे और सबका प्यार भी पाते रहेंगे, अनुभवी अच्छे अच्छे होते रहेंगे और हल्कापन भी अनुभव करेंगे। वो ये एक ड्रामा की कोई भी सीन अगर सामने आती है, ड्रामा की कोई भी सीन अगर सामने आती है उसे अपने को घबराना नहीं है। क्यों नहीं घबराना है? कि ये बना बनाया ड्रामा है, बना बनाया ड्रामा है, इसको कोई ऊपर नीचे नहीं कर सकता है। कोई हमारे से नाराज होता है वो ड्रामा की भावी बनी हुई है पहले से ही, कोई हमारे से खुश रहता है वो ड्रामा की भावी पहले से ही तैयार बनी हुई है। लेकिन अपना चार्ट नंबर वन यही रखना है कि हमारा हमारे साथ कोई बोलता है तो भी ठीक है, नहीं बोलता तो भी ठीक है, दोनों में राजी रहना है, खुश रहना कि अपनी वाइब्रेशन उसके पास अच्छी 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 पहुंचती रहे। कोई भी वाइब्रेशन हमारी तरफ से कोई नेगेटिव नहीं पहुंचनी चाहिए। सामने वाला वाइब्रेशन कितनी भी हमारे लिए कैसी भी वाइब्रेशन भेजता रहे, अगर अपनी तरफ से एकदम अचल अडोल बन करके जितना हम रहेंगे उतना ही आप इच्छित से जिएंगे, सम्मानित जीवन जिएंगे। इस ब्राह्मण परिवार में कुछ ऐसे भी बाबा के बच्चे हैं जो प्यार के प्यासे हैं, ब्राह्मण को ब्राह्मणों से प्यार नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा, कोई किसी के पास जाने के लिए तरसता है, यहां तक के कोई ओम शांति तो करे मेरे को, कोई इसके लिए भी तरसते हैं, कोई वो पहल करे पहले, वो बुलावे मेरे को पहले, मैं क्यों? वो ये नहीं सोचते कि भी वो बहुत 15-20 साल से मेरे से बड़ा है, वो टीचर बड़ी है मेरे से, मैं तो पीछे आया हूं, मैं क्यों ओम शांति करूं पहले? वो करे ना पहले ओम शांति। तो झुकना, ये झुकने का मार्ग है बाबा का घर। अगर आप झुकेंगे नहीं, निर्माणता अपने जीवन में नहीं लाएंगे तो अपने अंदर ही भारीपन अनुभव करते रहेंगे, हल्कापन नहीं करेंगे। तो अपना ही अगर रास्ता क्लियर करना है तो हर एक आत्मा को सम्मान देते रहो, प्यार देते रहो, रिगार्ड देते रहो। आज दादियां जो है कैसे आगे बढ़ गई, छोटे बच्चों को भी प्यार करती थी दादी, अपने समान वालों को भी दादी प्यार करती थी, अपने से बड़ी उम्र वालों को भी दादी बहुत प्यार करती थी। लेकिन लोग देख देख के हैरान होते थे कि इतनी मुख्य प्रशासिका दादी और इतनी निर्माणचित, वरना लगता था। मुझे याद है कि जहां यहां पर 8 माताएं आई थी, मैंने पहले भी क्लास में सुनाया था कि 8 माताएं आई थी दिल्ली से, विशाल भवन में ठहरी थी, बड़े घर की थी माताएं, 8 माताओं को एक ही कमरा दिया गया था। उस समय यहां रामश्लोक भाई था, उसने रूम दिया तो दादी, बड़ी दादी आंगन में खड़ी थी, इतने में वो भी 8 माताएं अचानक सामने आ गई, सबने ओम शांति किया दादी को। तो दादी ने एक प्रश्न पूछा, दादी ने कहा आप सभी खुश हो? माता ने कहा हाँ सभी हम खुश हैं। आप देखो, आप रूम तो आपको इतना बड़ा रूम दे दिया है और घरों में तो आप आराम से रहते होंगे, तो आपको तो यहाँ कठिनाई तो होती होगी, एक ही कमरे में सभी ठहरे हुए हैं। तो एक माता ने क्या जवाब दिया, दादी नहीं, घर में तो भले हम अकेले अकेले रहते थे लेकिन यहां पर संगठन का जो बल होता है, जो शक्ति होती है, वो लौकिक परिवार में नहीं मिलती है। भले हम अकेले घर में रहते हैं, किसी से बात तो नहीं करते ना, ऐसा संगठन वो मधुबन में मिलता है। तो हम खुश हैं संगठन में रह रहे हैं, एक दूसरे के अच्छे अच्छे अनुभव सुनने को मिलते हैं, कुछ प्रेरणाएं मिलती हैं, अच्छे अच्छे कुछ बातें सीखने को मिलती हैं। तो यहाँ हम बहुत सुखी हैं, एक ही कमरे में बहुत आनंद से रह रहे हैं। दादी खुश होगी कि चलो पॉजिटिव लिया इन सब से। तो मधुबन में कोई भी चीज कहां भी किसी को ठहरा दिया जाता है। हाँ, वो भी समय था मधुबन में जबकि ओम शांति भवन में बाबा आया करते थे। हम मधुबन निवासी को बाप दादी बोला करती थी कि पार्टी बहुत आ चुकी है मधुबन में, तो सभी मधुबन अपना अपना कमरा ऊपर लाइट हाउस में रहते थे। पांच कमरे थे, पांचों कमरों में हम पांच पांच बेड में रहते थे। तो कहा सभी बाहर आ जाओ, आप सभी अपने ब्रांडों में बैठ वहां सो दो, आप पार्टी ठहरेगी यहाँ पर। हमने खुशी से सबने खाली कर दिया कमरा। फिर पार्टी आ रही बाबा के घर में, बाबा के बच्चे आ रहे हैं, हम बरांडे में सभी भाई मधुबन वासी बाहर सोते थे और उनको पट बना के दे दिया वो कमरे, पांचों कमरे खाली कर देती है, कर देते थे हम। सब खुश हो गए। तो समय आने पर त्याग भी करना पड़ता है, समय आने पर अपने आप को मोल्ड भी करना पड़ता है, अपने आप को ढालना पड़ता है, सबके साथ मिलकर रहना है। परिवार की फीलिंग भी अच्छी आनी चाहिए कि बाबा के घर में जो भी आए हैं इतना त्याग करके आए हैं, कोई नौकरी छोड़ के आया है, कोई बिजनेस छोड़ के आया है, तो उनको बाबा के घर में भी आराम चाहिए, तभी तो वो अच्छे अनुभव करके जाएंगे। मैं कहता हूं हर एक आत्मा की ज्ञान को हजम करने की शक्ति अपनी अपनी होती है। ज्ञान को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लेना, ज्ञान को समझ लेना, ज्ञान को अपने व्यवहार में ले आना, इस सबके बस का नहीं होता है। क्योंकि आपके सामने ही, हमारे सामने ही बड़ी दादियां अष्टरत्न, उनका व्यवहार कितना बाप समान था, ऊंचा था, निर्माणचित था। हमारे सामने सामने ही संपन्न संपूर्ण बाप समान बन करके तैयार होके बाबा के पास पहुंच गए। और दूसरा जो है 108 रत्न, वो भी हमारे सामने सामने तैयार होके वो भी चले जाएंगे। और तीसरा जो है 16,000, वो भी धीरे धीरे एक दूसरे को देखते देखते सीखते सीखते वो भी अपने संपन्न एकदम संपन्न और संपूर्ण अपने आप बन करके वो भी बाबा के पास चले जाएंगे। इस संसार में सबका पाठ एक समान तो होता नहीं है। बाकी एक बात हम हमेशा याद रखें कि जिस घर में शांति का अनुभव वहां होता है, जिस घर में नारी की इज्जत होती है, नारी को बराबर सम्मान मिलता है। कि लौकिक परिवारों में हमने प्रैक्टिकल देखा है, अगर परिवार में 6 मेंबर हैं और 6 मेंबर में भी अगर 5 मेंबर ज्ञान में नहीं है, कोई राधा राधा स्वामी को याद करता है, तो कोई किसी गुरु को याद करता है, कोई देवी माता को याद करता है, और एक ही अगर रतन घर में एक ही माता बाबा की बच्ची बनी है, ज्ञान में चल रही है, धारणों की मूर्ति है, निर्माणता की मूर्ति है, पवित्रता का फाउंडेशन मजबूत है, ऐसी आत्मा को अगर परिवार के अंदर कोई सम्मान देता है, सम्मान देता है, इज्जत देता है, वो घर के अंदर सदा ही शांति बनी रहती है। एक ही ज्योति जगती है, अमृत वेले वो आत्मा उठेगी, उठ करके बाबा को याद करेगी। बाकी सब जितने भी अपने अपने इष्ट को जो याद करने वाले होते हैं, सब खटिया पर सोए होते हैं। और वो एक ही रतन अगर वो बाबा को याद करता है, उसका प्रभाव पूरे फैमिली के अंदर पड़ता है, माहौल चेंज हो जाता है। होता है कि नहीं होता है माताएं? सबको अनुभव है ना, तो कितनी कमाल की बात है ना। अगर वो पांचों ही अगर धीरे धीरे फिर अपने आप ही वो माता का प्रभाव बच्चों पर, बड़ों पर, सब पर पड़ता है। ये होता है। मैं एक एग्जाम्पल आपको देता हूं, पहले भी एक बार क्लास में सुनाया था। चंडीगढ़ से एक सरदार जी आए थे, वो मेरे पास सेवादारी थे। अचानक ही मैंने उनसे पूछ लिया कि आपके परिवार में से आप सब ज्ञान में कौन कौन है। उन्होंने कहा मैं अकेला ज्ञान में हूं, पांच भाई हैं हम, पांचों में से चार भाई मेरे से बड़े हैं, मैं पांच छोटा हूं सबसे। तो मैं ज्ञान में एकदम, मेरे को 10-12 साल हो गए ज्ञान में चलते, और मैं बहुत अच्छा सुखी हूं, परिवार सुखी है, ज्वाइंट फैमिली है। अच्छा, कहता ज्वाइंट फैमिली है, कोई भी परिवार में कोई भी बात ऊपर नीचे होती है, मेरे पांचों भाई इकट्ठे बैठ करके राय सलाह करते हैं, और दरानी जिठानी सब प्यार से सब रहते हैं, कोई झगड़ा नहीं होता। जबकि वो ज्ञान में नहीं है, वो कारण कहता मेरे कारण सब शांत रहते हैं, मेरे से सब प्रेरणा लेते हैं। कोई भी घर में कोई भी मीटिंग होती है, कोई बात ऊपर नीचे होती है, मेरे से राय सलाह लेते हैं, पूछते हैं क्या करना चाहिए। आप योगी हो, आप पवित्र हो, आपकी जो राय होगी वो बहुत अच्छी होगी, कल्याणकारी होगी, आप कुछ बताओ। तो कहता मैं राय सलाह देता हूं। तो 25-30 का भोजन, कहते जब परिवार ज्वाइंट फैमिली है, 25-30 बैठते हैं परिवार में एक ही जगह पर, सब स्थान पर जैसे भोजन करते हैं, अनाज एक ही स्थान पर होता है, पांचों भाइयों का एक ही जगह पर कंट्रोल होता है, उसका कंट्रोल कहता मैं ही करता हूं, बाकी सबके बिजनेस अलग अलग हैं, लेकिन अनाज एक स्थान पर जमा होता है। कोई छोटी मोटी कोई भी चीज लेनी है, कहता वो सब हम घर में सब प्रबंध करके रखा हुआ है, सब इकट्ठा स्टॉक रखा हुआ है, और मैं सब तैयार करके रखता हूं, सबको सुख देता हूं, खुश रखता हूं, सब एकदम वो मेरे को रिगार्ड देते हैं, मैं उनको सबको सम्मान रिगार्ड देता हूं, बहुत प्यार से चलते हैं, बहुत खुश है मेरे ऊपर, मैं उनसे सबसे खुश हूं, भले वो ज्ञान में नहीं है, कहता मुझे सब रिगार्ड देते हैं। तो आस पड़ोस वाले भी डरते हैं कि पांचों भाई एक हैं, पांचों भाई एक होकर रहे हुए हैं, इससे झगड़ा नहीं करना है। तो कितना भी प्रभाव है, भले एक ही ज्ञान में चलता है, लेकिन एक ही रतन का प्रभाव पूरे फैमिली में जा रहा है, पड़ोसियों पर भी प्रभाव पड़ता है। जब एक ही बैठ कर लंगर खाते हैं पूरा परिवार के अंदर, और सब आस पड़ोस वाले भी खुश होते हैं, देखो कैसे आजकल के जमाने में ये ऐसा माहौल कहाँ मिलता है। और यहाँ बन बन की काठी, किसका कैसा संस्कार, किसका कैसा संस्कार, हर एक आत्मा का संस्कार अपना अपना है, फिर भी हम एक होकर के यहाँ रहे हुए हैं ना। आप देवी देवताओं के आप चित्र देखोगे ना, आप लक्ष्मी नारायण और स्वर्ग का जो ऊपर ओम शांति भवन में है, सबके फेस एक समान दिखाए हुए हैं, सबके फेस एक समान, देवी देवताओं के जो फीचर्स हैं वो आप मंदिरों में भी आप देखेंगे, एकदम फेस एक समान दिखाए होते हैं, स्माइलिंग सबकी एक समान होती है। जैसे चेहरे बोल रहे हैं, कुछ शिक्षा दे रहे हैं अपने भक्तों को, तो कितनी एक बहुत प्रेरणादायक वो चित्र भी, कितनी सेवाएं करते हैं। और वो आप लोग ही तो हो सभी देवी देवताओं के चित्र, तो उसका मतलब ये होता है कि एक समान फीचर्स माना हमारी जो भी एक मात्र एक जो होनी चाहिए राय सलाह के अनुसार। हम देखो सतयुग में एक धर्म होता है, एक राज्य होता है, एक धर्म होता है, एक ही राज्य होता है, एक मत होकर के हम वहां सतयुग में सब होते हैं, चलते हैं। तो ऐसे उसके संस्कार अभी से ही हम अपने जीवन में भर रहे हैं ना, ऐसे तो नहीं कि गुटबाजी की तरह ऐसी कोई वो अपनी गुटबाजी अलग चला रहा, मैं अलग चला रहा हूँ, वो दूसरा अलग चला रहा, तो वो कोई देखने में तो अजीब सा लगता है ना कि जैसे गुटबाजी का ये बड़ा लीडर है, ये दुनिया में चलता है, महामलेश्वरों के जो आश्रम ही होता है वहां चलता है, यहाँ नहीं चलता। यहाँ एकमात्र होकर के जब हम चलते हैं तो बहुत प्रभाव पड़ता है। और अपने घरों में भी यही फिर यहाँ से शिक्षा लेकर के जाते हैं, घरों में भी फिर वही नेचुरल पार्ट वही प्ले करते हैं कि बाबा कितना वंडरफुल, बाबा का ज्ञान है कि हमें कितना कुछ सिखाता है, हर प्रकार से बाबा की गाइडेंस जो हमको मिलती है बहुत सुख देती है गाइडेंस। दुनिया में आप देखते हो, आप एक महामलेश्वर ने मेरे से प्रश्न पूछा था और कहा था कि ये संस्था जो है, जब सुखधाम में जब वो ठहरे थे 14 महामलेश्वर आए थे 88 में, तो उनमें से एक ने मेरे से प्रश्न पूछा था, तो उन्होंने कहा था कि संस्था बहुत छोटी सी थी, एकदम भड़की हो गई है, बड़ी हो गई है, कैसे होगी बड़ी। तो मैंने कहा दो ही कारण है जिसके कारण वो आगे बढ़ रही है। कहता क्या? मैंने कहा एक तो प्यूरिटी का फाउंडेशन बहुत पावरफुल है, मजबूत है हमारा, ब्रह्मा कुमारों ब्रह्मा कुमारियों का इतना पावरफुल है उसको कोई हिला नहीं सकता है। और दूसरा यहाँ की यूनिटी, प्यूरिटी और यूनिटी, एक मत होके हम सब चल रहे हैं, जो एक दादी जी का डायरेक्शन मिलता है उसी डायरेक्शन अनुसार सब हम फॉलो करते हैं। ऐसे नहीं को वो अपनी मत चलावे वो अपनी मत चलावे ना, एक मत होके हम सब चलते हैं। कहते ये दोनों ही जो है ना विशेषताएं ये मेरे आश्रम पर नहीं है। कहता वहां चिमटे मारते हैं एक दूसरे को, पीटते हैं, चेले चपाटे, बहुत लड़ाई झगड़ा करते हैं, मैं तो तंग आ गया उनको कंट्रोल करने के लिए, बहुत परेशान हो गया हूं। मैं दादी जी को कहूंगा कि दादी आप में संस्था में से कोई भी एक साधारण से साधारण भाई अगर हमको आपको दे दो ना हमारी आचरण को कंट्रोल करने के लिए, तो मैं बहुत शुक्रिया करूंगा दादी जी का। तो दादी जी सचमुच जाकर को बोल दिया कि दादी एक आपका इसी परिवार में ईश्वरी परिवार में कोई एक भाई हमको दे दो हमारा आचरण संभालने के लिए, हमारे पास कंट्रोल नहीं होता। तो दादी ने कहा इस सभा में से कोई भी आपको जो पसंद है भाई ले दो यहां से। तो देखो इतना वो अपने आप को ये समझे कि वहां हम भले 2.5 लाख उसका चेल शिष था, लेकिन फिर भी वो कंट्रोल नहीं कर पाया अपने आश्रम को। फिर भी तरह तरह की बातें होती रहती हैं आश्रम में, और यहाँ तो कितना कमाल की बात है, खाना खाते हैं तो भी शांति से खाना खाते हैं, क्लास होती है तो भी बड़ी शांति से क्लास, कोई आवाज नहीं कुछ नहीं। आज दुनिया की सभा में जो चलती है जो संस्था में आप जाके देखो कि वहां कितनी आवाज होती है, कितना शोर शराबा है, और यहां पर शांति ही शांति है। ये बाबा की कमाल है, एक ही बार बाबा ने आकर के हम बच्चों को इतना ऊंचा ज्ञान जो दिया है, ऐसा ज्ञान फिर कल्प के बाद जाकर मिलेगा। और ये देखने को दिन थोड़ी मिलेंगे, आपस में हम भाई बहन मिल रहे हैं, प्यार से एक दूसरे की दृष्टि लेते हैं, आदान प्रदान करते हैं, और कितना एक दूसरे के नजदीक आने का सौभाग्य प्राप्त होता है। ये दुनिया में लोग सत्संग करते हैं और अपने अपने घरों में चले जाते, कोई किसी से मिलता नहीं है। यहाँ तो फिर भी हम एक दूसरे को सहयोग देते हैं, प्यार देते हैं, सहयोग देते हैं, उमंगों साथ देते हैं, आगे बढ़ाने का दूसरों को मदद करते हैं, तो कितना फैमिली की फीलिंग आती है, अपनापन की फीलिंग आती है कि ऐसा दुनिया में कौन ऐसी फीलिंग देता है। राधा स्वामी का गुरु यहाँ आया था, इतना बड़ा राधा स्वामी का गुरु यहाँ आया था, और जबकि नया नया हमारा वो चला था शांतिवन में, सोलर सिस्टम जो चला था, सोलर सिस्टम, और वो देखने के लिए आया था कि ये भोजन किंग कैसे बनाते हैं आप लोग, तो वो मैं देखने आया हूँ। तो उसने अपने साथियों को, चेलों को बोल दिया, कोई भी मेरी वीडियो नहीं बनाए, कोई मेरी फोटो नहीं खींचे, कुछ नहीं, बिल्कुल पेपर में नहीं वो डाले, सब मना था, कोई फोटो नहीं लेने देते थे उसको। तो यहाँ शांति स्तंभ पर जब समझ लिया, समझने के बाद उसने एक शब्द जाते समय बोला कि मेरे आश्रम में क्वांटिटी बहुत है, मेरे आश्रम में क्वांटिटी बहुत है, भीड़ बहुत है आने वालों की, लेकिन आपके आश्रम में जो भी क्वालिटी की आत्मा है ना, वो आपके पास है, भले भीड़ इतनी नहीं है लेकिन क्वालिटी की आत्मा है आपके पास। ये उसके शब्द थे, जो कमाल की बात थी ना। अमृतसर से एक ग्रंथ ही, बहुत बड़ा ग्रंथ ही आया था, ओम शांति ओम ने उसका, बहुत बड़ी दादी ने बड़े प्यार से उसका स्वागत किया। जब ओम शांति ओम ने स्वागत किया और उसके साइडों पर 9 लोग राइफलें लेकर के खड़े थे ताकि इनको कुछ हो ना जाए, अंगरक्षक, और वो इतना उसका मांग था, जब उसको सबको स्नेह दिया, प्यार दिया, मान दिया, अपना मन दिया कि ये फैमिली के आप ही सदस्य हो, तो वो देख के शर्मिंदा हो गया, कहता मैं तो इसके लायक तो हूं नहीं, इतनी आप लोगों ने मेरी इज्जत इतना सम्मान किया, मैं तो इतने लायक नहीं हूं। तो दादी ने कहा दो शब्द बोलो, कहता इतनी महान आत्मा इतनी यहाँ एक से एक बढ़ करके ज्ञानी तो आत्मा यहाँ इतनी महान आत्मा बैठी हुई है, इन आत्माओं के आगे मैं क्या शब्द बोलूं, मेरे पास शब्द नहीं है कोई इतना आप लोगों की इतनी तारीफ करूं मैं, जो कहता मैं इसलिए सम्मान के लायक नहीं था जो आप लोगों ने इतना मेरा सम्मान किया, इतना शब्द ऐसे बोल रहा था, तो खुश होकर गया लास्ट में। तो इसलिए बाबा ने ये सिखाया हम बच्चों को, सम्मान दो, निर्माणचित रहो और सबको अपनापन दो। आप किसी भी स्थान पर आप चले जाओ, बस स्टैंड चल जाओ, ट्रेन में चल जाओ, प्लेन में चल जाओ, सब आपको प्यार की नजर से देखते हैं, देखते हैं ना कि ये ब्रह्मा कुमारी आई है। मैं कश्मीर, हम एक पर गए थे जो कश्मीर, जब आप हमेशा आप ध्यान रखो, आप ये जो बैज की बाबा कभी कभी मुरली में महिमा करते हैं ना, बैज, वो बैज क्यों बाबा महिमा इतनी करते हैं, बैज समय आएगा आपको बैज का भी उस समय महत्व होगा जब अपने आगे समस्या जब आएगी सामने, ये कईयों के आगे आई है समस्या। जब वहां हम गए थे कश्मीर और वहां रास्ते में हमारी गाड़ी रोक दी उन्होंने, जब गाड़ी रोक दी तो उसने मुसलमान थे वो, तो जिन्होंने गाड़ी रोकी, तो उसने कहा अपने कागज दिखाओ, अपना वो दिखाओ, कार्ड दिखाओ। तो हमारे में से एक ने बोल दिया आप अपना दिखाओ, तो वो एकदम वहीं से भड़क गया, वो ऐसा भड़क गया कि वो बहुत मुश्किल होगी, तो वो ऐसा भड़क गया हमारा आधा घंटा वहीं वेस्ट हो गया उसकी बहस करने से उससे। इतने फिर हम भी थोड़ा अंदर बैठे रहे साइलेंस में गाड़ी में, उसके बाद फिर जब लास्ट में वहां बाहर आया तो मेरा बैज देख करके ना लक्ष्मी नारायण का वो देख करके एकदम चौंक गया, वो जो ज्यादा लीडर था ना बोलने वाला, वो ज्यादा बोलने वाला, उसने मेरे बैज को जब देखा तो वहीं बोलने बोलने में वो शांत हो गया। तो कहता भाई जी ये जो आपने लगाया हुआ ना ये, इसके कारण हम आपको छोड़ देते हैं। नहीं तो हम छोड़ने वाले नहीं थे, हम छोड़ने वाले नहीं थे आपको, ये जो आपने लगाया ना इसके, इशारा किया उसने हाथ से, इसके कारण हम आपको छोड़ रहे हैं, हम छोड़ने वाले नहीं थे आप। वो बहुत गर्म था वो मुसलमान, वो बैज को देख के ठंडा हो गया। बस बाबा की कमाल थी। तो इसलिए बैज जो है ना हमेशा लगा के रखो, और कभी भी आप, वो समय आएगा आप देखना जब नाजुक समय आएगा, अभी तो देखने में नाजुक समय नहीं आ रहा है, अभी तो चला रहे हैं ऐसे ही, आगे चल के समय आएगा कि आप का जो बैज होगा ना, अधिक करके आप अपने बैज को जैसे सुबह लगाते हो, लगाने से पहले केवल 10 सेकंड के लिए उस बैज को दृष्टि देते हुए चार्ज कर लो आप। 10 सेकंड, 10 सेकंड कितने होते हैं, कुछ नहीं होता। 10 सेकंड खाली उसको दृष्टि दो, वो बैज को दृष्टि देते हुए फिर आप लगा लो आप, समझे ना। फिर आप लगाने के बाद उस बैज की जो तरंगे वा ओरा आबा मंडल आपका तैयार हो जाएगा, और कहीं भी आपको कष्ट होगा, जो कहीं भी आपको मुसीबत आए, और वो बैज ही आपको सेफ रखेगा, क्योंकि आपका ओरा बना ही रहेगा, सारा दिन बना रहेगा, आप चारों तरफ आप कहीं भी जाओ, वो सूक्ष्म रूप से वो आपकी सेवा करता रहेगा। आप भले महत्व नहीं देते हैं, लेकिन समय आने पर आप महत्व देंगे, जब समय सामने आता है, क्योंकि समय पूछ के नहीं आता है, समय कभी भी आ सकता है। इसलिए बैज की भी हम सम्मान देवे, बैज को हम चार्ज करके सेरे, फिर हम लगा के रखेंगे तो बैज ही आपको सेफ रखेगा हर समय, हमेशा बाबा ही छत्र छाया बनकर हम बच्चों को सेफ रखता है। मधु बनाते हो तो भी हम बाबा के बच्चे सेफ हैं। आप जब घरों में जाओगे तो भी आप रास्ते में भी चलते आपको बाबा ही सेफ रखेगा। ये एक बात आप हमेशा याद रखें, बाबा सदा ही हर पल हर घड़ी बाबा की टचिंग मिलती रहती है, लेकिन उस टचिंग का आभास किसी किसी को होता है, किसी किसी को उसका महसूस होता है कि बाबा की टचिंग मिल रही है, अच्छी फुरना अच्छे विचार उसमें आते हैं, कि ये समझ लेना चाहिए कि बाबा की टचिंग है, अच्छे विचार आए हैं। हो सकता है कि वो वही विचार आगे चल करके सेफ्टी का कारण बन जाए। इसलिए आप कभी भी आप व्यर्थ से जितना आप बच के रहेंगे, उतना ही आपकी जो टचिंग जो बाबा की मिलती रहेगी ना, वो बहुत आराम से हर बात में सेफ रहेंगे आप। क्योंकि दुनिया में बहुत हलचल होने वाली है, हो भी रही है, लेकिन ये कोई हलचल नहीं मानी जाती है। कई ब्राह्मणों में से भी कई इतने कमजोर हैं, इतने मनोबल कमजोर है कि ब्राह्मणों में भी बहुत, घर में कोई छिरी छोड़ देता है तो पता चल जाता है कि ये वास्तव में कहां तक, कितने के पानी में है, कितनी की इतने अंदर पावर है, कितनी शक्ति है, ज्ञान को कहां तक इसने धारण किया है, उसके अनुसार ही वो अचल अडोल वो आत्मा रह सकती है। ये तो एक साल तक, दो दो साल तक कई रोते ही रहते हैं, एक घर में से कोई शरीर छोड़ देता है, तो ज्ञानी तो आत्मा भी, तो वो ज्ञान का आएगा हुआ। फिर ज्ञान को यूज करना ये बहुत हिम्मत वाली बात है, ऐसे परिस्थितियों के समय ज्ञान को यूज करना, ज्ञान जितना आप बुद्धि में चिंतन में रहेंगे, चिंतन चलाते रहेंगे, ज्ञान का चिंतन, उतना ही आप बहुत सुखी रहेंगे आप। क्योंकि ज्ञान बहुत आपको लास्ट में भी बहुत सेफ रखेगा। अभी भी आप हर पल हर घड़ी बाबा आपको लाइट हल्कापन का अनुभव कराता रहेगा, क्योंकि ये योग एक ऐसी शक्ति है, इतना बाबा की कमाल कहेंगे कि अगर आप सारा दिन, कई ऐसे भी बाबा के बच्चे हैं जो बाबा ने कहा वो 5 मिनट भी सारा दिन याद नहीं कर सकते हैं, लेकिन अभी समय ऐसा आ गया है कि चलते फिरते उठते बैठते आप योग में देह से न्यारा होने का अभ्यास ज्यादा करेंगे तो बहुत कुछ आपको प्राप्ति मिलती रहेगी। यही आपका पुण्य का खाता भी जमा होता रहेगा। जितना हो सके ब्राह्मणों को एक दूसरे को सुख देते रहें, दूसरों को ही मदद करते रहें, ताकि दूसरे से भी कुछ अपनेपन की फीलिंग आती रहे, परिवार की फीलिंग आती रहे। तो अगर ये परिवार की फीलिंग आती है तभी तो ये मजा है यहाँ संगठन में बैठने का, सेवा करने का, तभी तो मजा है। अगर हम परिवार में एक दूसरे से रूठे हुए हैं, एक दूसरे का मुंह इधर है, दूसरे का मुंह उधर हो, तो मजा नहीं आता फिर, ठीक है ना। चलिए सुख से रहें, मौज से रहें, मस्त रहें, उसी बाबा की प्यार में इतना डूबे रहें कि आपके नेत्रों से, जैसे कि आप नेत्र उस योग में डूबे हुए हैं, ऐसे ही आप गहराइयों का अनुभव करते रहें कि जिससे बहुत आपको भरपूरता का अनुभव हो कि कैसा भी समय आपके सामने समस्याओं का आए, लेकिन आप हर समस्याओं में बिल्कुल लाइट रहें, हल्के रहें, जरा भी डामाडोल ना हो। इस समय तो शक्तिशाली बनने का ही समय है। अगर आप थोड़ी सी भी समस्या आ जाती है, घबरा जाएंगे, तो उसे एक ही चीज की कमी होती है, हर सीन को अगर साक्षी होकर नहीं देखते हैं तो उसके कारण ही हम डामाडोल हो जाते हैं। डामाडोल क्यों होते हैं माताएं, क्यों होती है डामाडोल? हर सीन को साक्षी हो नहीं देखते हैं, तो साक्षी होकर के देखना है, बहुत बड़ी हिम्मत है, बहुत बड़ा। जैसे कि आप ज्ञान में अच्छी तरह से बुद्धि में समाया हुआ है ज्ञान को, तो इसी ज्ञान के द्वारा ही आप सेफ रहेंगे और परिवार की भी मदद करते रहें और लेती भी रहें, ठीक है। ओम शांति।